नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यशतारिणे श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तमेव देवं वयमात्मदैवतम् परम प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां सनोधास्यति सं महात्मा। तमेव देवं वयमात्मदैवतम् परम प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां सनोधास्यति सं महात्मा। तमेव देवं वयमात्मदैवतम् परम प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां सनोधास्यति सं महात्मा। हरे कृष्ण। तम उसको एव निसंदेह देवम परमेश्वर वयम हम सभी आत्मदैवतम समस्त जीवात्माओं के स्वामी परम दिव्य प्रधानम संपूर्ण भौतिक शक्ति के मूल कारण पुरुषम परम भोक्ता विश्वम जिसकी शक्ति से यह ब्रह्मांड बना है अन्यम पृथक स्थित ब्रजाम हम चलें सर्वे सभी शरणम शरण शरण्यम शरण के लिए उपयुक्त स्वानम अपने भक्तों को शाह वह नह हमको धास्यति प्रदान करेगा सम कल्याण महात्मा परमात्मा हरे कृष्ण। असल में 26-27 दो श्लोक एक साथ अन्वय है। हमको बताया गया था 25वां श्लोक, ठीक है बात तो एक ही है। तो श्री भगवान के गुणों का वर्णन इस श्लोकों में हुआ है और कोई साधारण व्यक्ति भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर रहा है। आप लोग क्रमशः हम सुनते आ रहे हैं, देवता लोग भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो यह प्रसंग श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद का है, 9वें अध्याय का, जिसमें वृत्रासुर के उत्पत्ति के बाद देवताओं का संकट बढ़ गया। आप जानते हैं भागवत का यह प्रसंग कि एक बार ऐश्वर्य के मद में देवराजी इंद्र अपने गुरु का अपमान कर दिए बृहस्पति जी का, तो इसके कारण बृहस्पति जी उनको सामने तो कोई श्राप नहीं दिए लेकिन सभा से निकल कर चले गए। पूर्व की कथाओं को एक बार स्मरण करते हैं। एक बार देवराज इंद्र अपने अमरावती के राजधानी में बैठे थे देवताओं के साथ और उनके जसगान हो रहा था, उनके साथ बड़े बड़े देवता बैठे थे। बृहस्पति जी पीछे से आए, देखे कि इंद्र ज्यादा ऐश्वर्य के मद में है, अपनी पत्नी शची के साथ बैठा है। तो जो वास्तविक फॉर्मालिटी होनी चाहिए, औपचारिकता, कि आसन छोड़कर गुरु को प्रणाम करें, आसन दे, वो नहीं कर पाए, देख कर भी अनदेखी कर दिए। तो बृहस्पति जी धीरे से निकल गए सभा से। बाद में जब इंद्र को ध्यान आया तो गुरु जी कहाँ गए, पता लगाया गया तो घर पर भी नहीं है, कहाँ है पता ही नहीं चला, चुपचाप चले गए कहीं। तब तो यह संवाद तो बड़ा अद्भुत है, छपा न्यूज़पेपर के फर्स्ट पृष्ठ पर, इस देवताओं से बृहस्पति जी का अनबन और गुरु जी गायब। तब तो असुर लोग निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाएंगे, स्वर्ग पर आक्रमण करके अपने कब्जे में कर लिए। अब इस विषम परिस्थिति में देवताओं की एक विशेषता है, दोषों के साथ दोष तो बहुत नगण्य है उन विशेषताओं के सामने, कि वो भगवान के भक्त हैं। और भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं। तो अपने सीनियर ब्रह्मा जी से के शरण में गए कि अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने उनके इस अपराध को जघन्य बतलाया, लेकिन विषम परिस्थिति में एक सलाह दिए कि आप अपने भतीजे त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लो। त्वष्टा जी सहोदर भाई थे, अदिति के पुत्र देवराज इंद्र के सहोदर सगे भाई थे। उनके पुत्र विश्वरूप बड़े ही वैदिक ब्राह्मण थे, वैष्णव थे। तो तत्कालिक पुरोहिती उनके जी में सौंपा गया। बहुत आग्रह करके इंद्र उनको मनाए, यद्यपि वे तैयार नहीं हो रहे थे। और ब्रह्मा जी उनको बता चुके थे कि विश्व रूप का एक माइनस पॉइंट है जिसको सहना पड़ेगा, वो यह है कि विश्व रूप की माँ रोचना असुर कुल की है। तो अष्टा जी असुर कुल की स्त्री से विवाह किए थे, तो स्वाभाविक ननिहाल से उसका आकर्षण होगा असुरों के तरफ से, तो उतना तो आपको थोड़ा सहना पड़ेगा। तो इंद्र स्वीकार भी किए, चलेगा। लेकिन बाद में जब विश्व रूप देवताओं की समृद्धि के लिए हवन कर रहे थे, तो देवताओं की समृद्धि तो बढ़ रही थी लेकिन असुर लोगों का हरास नहीं हो रहा था, वो भी कमजोर नहीं पड़ रहे थे। तो इनका लक्ष्य था इंद्र का कि हमारी समृद्धि बढ़े और असुरों का विनाश हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो बाद में इंद्र यज्ञ करता ऋत्विकों से पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लोग संकेत किए, अपने गुरुजी से पूछिए, कुछ हवन असुरों के समृद्धि के लिए भी कर देते हैं गुप्त रूप में। इतना सुनते ही इंद्र भूल गए कि ब्रह्मा जी उनको संकेत किए थे कि इनका लगाव ननिहाल से रहेगा। तलवार उठाए और विश्व रूप का वध कर डाले। तो इस दुष्कर्म के कारण इंद्र को बहुत भोगना पड़ा। उनके पीछे ब्रह्महत्या लग गई, जिसको किसी तरह चार भागों में बांटकर इंद्र मुक्त हो गए। इतने ब्रह्मवेता पुत्र का मर्डर करके रोड पर घूम रहा है इंद्र। त्वष्टा जी को यह असह्य हो गया। त्वष्टा जी यद्यपि इंद्र के भाई थे, लेकिन भातृ मोह से पुत्र मोह बढ़कर है, और वो भी असाधारण पुत्र, भगवत भक्त नारायण कवच का ज्ञाता। त्वष्टा जी इसको नहीं सह पाए। इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किए, जिससे उनकी इच्छा थी कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। लेकिन भगवान की विशेष अनुग्रह से उस यज्ञ के मंत्रोच्चारण में कुछ कमी रह गई। उच्चारण में मंत्र तो ठीक था, लेकिन हर्ष दीर्घ के अंतर से कुछ गड़बड़ हो गया। इंद्र को मारने वाला पुत्र नहीं उत्पन्न कर पाए। यज्ञ कुंड से एक बहुत बड़ा असुर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। तो आप लोग क्रमशः सुनते आ रहे हैं कि वृत्रासुर जब उत्पन्न हुआ, हाथ में त्रिशूल लिया हुआ और अपने शरीर से पूरे आकाश को घेर लिया, भयंकर रूप। देवता लोग उसके सामना करने के लिए आए, अपना अपना हथियार उठाए, उसको मारने का प्रयास किए, लेकिन जो भी हथियार छोड़े उसको पकड़कर नाश्ता कर गया, निगल गया, सब खा गया। देवताओं की बुद्धि तो एकदम काम नहीं कर रही थी, अब क्या किया जाए। तो इस विषम परिस्थिति में देवता लोग सब लोग मिलकर श्री भगवान का शरण लिए, क्योंकि यह सत्य सिद्धांत है कि विषम परिस्थिति में यदि भगवान का स्मरण किया जाए तो परिस्थिति टल जाती है। हरि स्मृति सर्व विपदा विमोक्षणम, ये सिद्धांत है। हरि के स्मरण से विपत्तियां टल जाती हैं। तो भगवान का स्मरण किए, उनके चरणों में स्तुति किए, भगवान के स्मरण करने से भगवान उनके सामने प्रकट भी हुए। सब कथाएं बाद में आएंगी। तो भगवान के शरण में लोग स्तुति करते हैं, जो आप सुनते आ रहे हैं एक साथ ही। श्री देवा उच्छु, देवता लोग बोलते हैं। तो भगवान के विविध गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जगत की जो सृष्टि हुई है, ये पंचतत्वात्मक विश्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और इसके साथ जो विभिन्न देवता हैं, प्रजापालक, सब आपके बस में है, सब कुछ के कंट्रोलर आप हैं। और हम लोग आपसे ही अस्तित्व प्राप्त किए हैं। जो कुछ भी हमको अधिकार प्राप्त हुआ है या जो भी क्षमता प्राप्त हुई है, वो सब आपके द्वारा। आप हमें शक्ति भी दिए हो, अधिकार भी दिए हो। आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और जब जब भी संसार में संकट पड़ा है, तब तब आप इस जगत को संभाले हो। भगवान प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके सृष्टि पालन और संहार करते हैं, फिर भी पालन अपने हाथ में लेते हैं। सृष्टि रजोगुण को स्वीकार करके भगवान के ही शक्ति से समन्वित होकर ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं। उसमें भगवान की इनडायरेक्ट शक्ति है, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि कराना। बीच बीच में ब्रह्मा को जब समझ में नहीं आता है तो बार बार भगवान का शरण लेते हैं और भगवान उनको ज्ञान देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंती जत सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में तो ब्रह्मा को ज्ञान दिया ही गया, लेकिन उतना ही परफेक्ट ज्ञान नहीं था। बीच बीच में उनको बार बार भगवान के शरण लेना पड़ा और बार बार भगवान उनको सहायता करना। अद्यावधि, आज भी, ऐसा नहीं कि हो गया एक बार। सृष्टि करने की सारी सामग्री दे दिए, बुद्धि दे दिए, तरीका बता दिए, फिर भी ब्रह्मा को समझ में नहीं आता कि कैसे बढ़ेगी। सनकादिक की रचना किए, वो लोग सुन ही नहीं रहे इनकी बात। फिर प्रजापतियों को पालन किए, सब अलग अलग न्यूट्रल हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। तो फिर भगवान के शरण लेते, क्या किया जाए। तो कोई तैयार ही नहीं हो रहा है, सृष्टि बढ़ ही नहीं रही आगे। तब उनको सलाह दिए कि आप मैथुनी सृष्टि कीजिए, पहले अविद्या की सृष्टि कीजिए। जब पांच महाअविद्या रूप फेविकोल लगाएंगे तब परस्पर ये लोग सटे रहेंगे। और इनको एक भौतिक सुख दीजिए, जिस सुख के कारण ये ऑटोमेटिक सृष्टि प्रारंभ हो जाएगा, मैथुन सुख। ये सब भगवान ज्ञान दिए तो मनु शत्रुपा को उत्पन्न करके सृष्टि किए। फिर भी उनको संकट आ जाता था। मनु महाराज को सृष्टि करके आज्ञा दिए कि आप पृथ्वी पर प्रजा पालन करो, तो मनु महाराज अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर घूम रहे, पृथ्वी का कहीं पता ही नहीं है। फिर ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई, कहां गई पृथ्वी। तो फिर भगवान उनको पृथ्वी को लाने के लिए स्वयं उनके छींक से उत्पन्न हुए वराह देव के रूप में, तो पृथ्वी को लाकर दिए मनु महाराज को। तो दे देने से सृष्टि नहीं हुआ। मनु महाराज को भी तपस्या करके शक्ति अर्जन करना पड़ा भगवान से। कहने का मतलब कि ये सारी बात हमारे जैसे मूर्ख भले न समझे, लेकिन जिनको फेस करना पड़ा है वो तो समझता है ना। देवताओं को पता है कि आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। न मनु सृष्टि कर सकते हैं, न ब्रह्मा कर सकते हैं। और प्रलय के समय जब सारा जगत डूब गया, तो सत्यव्रत महाराज को लेकर आप नौका विहार किए पूरा अपनी मस्ती में। तो अपने सिंह में नौका बांध करके सत्यव्रत महाराज अपनी रक्षा किए, और कृपा करके आप उस महान संकट से ऋषियों सहित मनु महाराज की रक्षा किए। और तो और सृष्टि के प्रारंभ में, एकदम शुरू में, जय श्री राधा रास बिहारी, तो जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई कमल के ऊपर, तो उस समय बहुत प्रचंड हवा चल रहा था चारों तरफ। ब्रह्मा अपने को संभालने की कोशिश कर रहे थे और उस हवा के झोंक से पानी में गिर जाते थे। और उस समय उनको समझ में भी नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तो उस समय भी आपने ही उनको बचाया। वो कोशिश कर रहे थे अपने उत्स का पता लगाने के लिए, लेकिन अपने सामर्थ्य से पता नहीं लगा पाए फिर ऊपर आकर कमल के ऊपर बैठे तो भगवान उनको ज्ञान दिए। ऐसा सारी बातें हैं क्रमशः पीछे के श्लोकों में, जो आज मैं पढ़ा 25वां श्लोक है। यह एक ईशो निज माया न ससर्ज जेना अनुसृजाम विश्वम वयम न यस्यापि पुरः समीहत पश्याम लिंग पृथ्वीश मानिनः। हे नाथ, आप ही एकमात्र ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, अपनी माया से जगत की सृष्टि करते हैं। न ससर्ज, हमारी सृष्टि करते हैं। जेना अनुसृजाम विश्वम, जिनके द्वारा शक्ति प्राप्त करके हम लोग भी आपके फॉलो करते हैं, सृष्टि करते हैं। वयम यस्यापि पुरः समीहित, पूरा पूरा हमारा संरक्षण आपसे प्राप्त हुआ है, तब हम समर्थ हुए हैं जगत सृष्टि में, जगत पालन में। फिर भी पश्याम लिंगम पृथ्वीश मानिनः, फिर भी हम आपके अस्तित्व को समझने में भ्रम कर जाते हैं, भूल जाते हैं। उसका कारण यह है कि जब अधिकार और शक्ति प्राप्त हो जाता है तब व्यक्ति अपने को पृथक अस्तित्व में महसूस करने लगता है। धन वैभव पद पोजीशन पाकर अहंकार हो जाता है, मन में आता है कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं भी तो कुछ ठीक भी है कि इसका मतलब कि और कोई है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूं, ये बहुत खतरनाक है। जैसे हिरण्यकश्यपु रावण समझते थे हम ही सब कुछ हैं, तो इस प्रकार लोग अपने को पृथक मानते हैं, स्वतंत्र ईश्वर मान लेते हैं। तो प्रभुता पाई काहू मद नाही, प्रभुता पाने पर, ऐश्वर्य प्राप्त करने पर, शक्ति प्राप्त करने पर किसको नहीं अहंकार होता है। जनरल सिद्धांत है कि हो ही जाता है सबको, सबको हो जाता है, प्रभुता पाकर अहंकार हो जाता है। तो इसके कारण इस अहंकार में दोष क्या है कि हम आपके अस्तित्व को नहीं समझ पाते। जब ही हमारे अंदर प्रभुता और हम भी कुछ हैं या हम ही सब कुछ हैं, तब भगवान को नहीं समझ पाते, स्वतंत्र ईश्वर के रूप में सोचते हैं, इसलिए न भगवान को समझ पाते हैं न देख पाते हैं। औ जानन्ति मां मूढ़ा मानुषम देहमाश्रितः, लोग समझते हैं कि वो भी हमारे जैसे एक मनुष्य थे, थोड़ा ज्यादा शक्ति था उनके पास, और क्या है, हम भी हैं, हम भी शासक हैं, राजा हैं, इसलिए वो नहीं देख पाते हैं, अपना अलग अस्तित्व के कारण नहीं समझते हैं। तो यो न सपत्नी भीष्मद्य मानान देवर्षि तिरियंग निशु नित्य एव कृतावतारस तनुभि समायया कृत्वात्म सात पाति जुगे जुगे च। कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपनी अचिंत शक्ति से अपने दिव्य शरीर का विस्तार करते हैं और समय समय पर आप इस प्राकृत जगत में आते हैं, देवताओं की सहायता करते हैं, ब्राह्मणों की सहायता करते हैं, साधु पुरुषों की सहायता करने के लिए आप कभी वामन, कभी ऋषियों में परशुराम या और भी नर नारायण व्यास देव के रूप में आते हैं, फिर जलचरों के रूप में भी आपका अवतार हुआ है, मत्स्यावतार, कूर्म अवतार, सभी प्रकार के जीवात्माओं के बीच आप हैं, परमात्मा रूप में तो सबके साथ हैं, फिर भी समय समय पर आप अवतार लेते हैं, मनुष्य के रूप में भी आते हैं, राम कृष्ण के रूप में। तो कृतावतारस तनुभि समाया, कृत्वात्म सात पाति जुगे जुगे च, हर युग में आते हैं, समय समय पर आते हैं। तमेव देवम वयमात्म दैवतम परम प्रधानम पुरुषम विश्वमन्यम ब्रजाम सर्वे शरणम शरण्यम स्वानम सनो धास्यति सम महात्मा। और इस प्रकार आप अपनी अहेतुकी कृपा से जगत का पालन करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं और सबके परम कारण हैं, ये प्रकृति और पुरुष के भी आप कारण हैं। छोटे छोटे पुरुष, मूल पुरुष तो भगवान ही है, परम पुरुष। तो इस स्थिति में जब हम भय से ग्रसित हैं, हम आपका शरण ले रहे हैं, क्योंकि ब्रजाम सर्वे शरणम शरण्यम, हम सभी ब्रजाम आ रहे हैं आपके ही शरण में। सभी लोग आ रहे हैं शरणम शरण्यम, आपके शरण में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ही शरण हैं, शरण लेने लायक आप हैं। अगर और किसी के पास जाया जाए तो इतना कन्फर्म नहीं है कि वो बचा ही लेगा, लेकिन आपके पास स्पष्ट है आप बचाएंगे। स्वानम सनो धास्यति सम महात्मा, क्योंकि प्रसिद्ध बात है कि आप अपने भक्तों को बचाते हैं। आप स्वानम का मतलब अपने जनों का, जो आपके शरण में आता है वो आपका है, अपने भक्तों को आप बचाते हैं। तो यह जानकर हम अपने कल्याण की इच्छा से आपके शरण में आए हैं, क्योंकि सम कल्याण आपके ही पास है, आप महात्मा हैं। समस्त आत्माओं के महाआत्मा, परमात्मा, महात्मा जो भी कहिए, आप ही हैं, आप हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस श्लोक में भगवान विष्णु को सृष्टि का आदि कारण माना गया है। श्रीधर स्वामी ने अपने भाष्य भावार्थ दीपिका में इसका उत्तर दिया है कि प्रकृति तथा पुरुष इस दृश्य जगत के कारण है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, परम प्रधानम पुरुषम विश्वम अन्यम। वे परम कारण हैं और स्त्री और पुरुष के सृजनात्मक शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। तो वे इस ब्रह्मांड से पृथक रहकर अपने विराट रूप में विद्यमान हैं। यहाँ पर प्रकृति शब्द से परमेश्वर की भौतिक शक्ति तथा पुरुष रूप से भगवान की श्रेष्ठ शक्ति सूचित होती है, जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है, प्रकृति में यान्ति माम काम। अंततः प्रकृति और पुरुष परमेश्वर में ही प्रवेश करते हैं। यद्यपि ऊपर से प्रकृति तथा पुरुष ही भौतिक जगत के कारण प्रतीत होते हैं, किंतु ये दोनों परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों के प्रकाश हैं। अतः परमेश्वर इन दोनों के कारण है, वे ही आदि कारण है, सर्व कारण कारणम। नारदीय पुराण का कथन है, अविकारोपि परमा प्रकृतिस्तु विकारिणी, अनुप्रविश्य गोविंद प्रकृति शाभिधीयते। प्रकृति तथा पुरुष दोनों निम्न तथा श्रेष्ठ शक्तियां भगवान से ही उद्भूत है, जैसा भगवत गीता में कहा गया है, गाम आविश्य, भगवान प्रकृति में प्रवेश करते हैं, तभी प्रकृति विभिन्न जगतों की सृष्टि करती है। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, न ही उनकी शक्तियों के परे है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सभी वस्तुओं के मूल कारण हैं, इसलिए भगवद गीता में कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। इतना तो बिल्कुल स्पष्ट सत्य है कि भगवान ही सबके मूल कारण है, अहम सर्वस्य प्रभो और मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही सारा जगत प्रवृत्त होता है, सृष्ट होता है। लेकिन इस बात को कौन जानता है? बुद्धा। सभी लोग नहीं जानते हैं, डल माइंडेड लोग नहीं जानते हैं। इति मत्वा, इस बात को मानते कौन है, समझते कौन है? बुद्धिमान लोग। तो ऐसे बुद्धा, भजन करने वाले को भागवत में बुद्धिमान, सुमेधा, प्राज्ञ, कई शब्द कहा गया है। प्रकृष्ट बुद्धि वाला है, सुंदर बुद्धि वाला है, विद्वान है, सब विद्वान, बुद्धिमान। तो बुद्धा, ये सब शब्द का प्रयोग हुआ है। समझदार लोग ही भगवान की भक्ति करते हैं, इस बात को जानकर। तो श्रीमद् भागवतम में जो मूल भागवत है, चतुश्लोकी भागवत, उसमें पहला श्लोक है, अहमेवा समेवाग्रे, मैं सृष्टि के पूर्व में मैं ही मैं था और कुछ नहीं था। सृष्टि के बीच में जो कुछ विस्तार दिख रहा है वो मैं ही हूं, मेरा ही विस्तार है। और महाप्रलय के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो जो शेष के रूप में बचेगा वो मैं ही हूं। इसलिए भगवान का एक नाम शेष है, शेष। तो ब्रह्मांड पुराण में भी इसकी पुष्टि की गई है। स्मृति व्यवधाने न प्रकृष्टि त्वमिति स्थिति उभयात्मा सुखित्वाद वासुदेव पर पुमान प्रकृति पुरुषस्येति शब्दैरेको विधीयते। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए भगवान परोक्ष में पुरुष और प्रत्यक्ष में प्रकृति की भूमिका निभा रहे हैं। चूंकि दोनों ही शक्तियां सर्वव्यापी भगवान वासुदेव से ही उद्भूत है, इसलिए वे प्रकृति तथा पुरुष दोनों कहलाते हैं। यही कारण है कि वासुदेव प्रत्येक वस्तु के कारण है, सर्व कारण कारणम। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान पिता है, लेकिन पिता ही नहीं माता भी है। पिता महस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ हूं, सब कुछ। अगर ऐसे भगवान झूठ बोलते तो विद्वान लोग इसको नहीं मानते। तो परम सत्य है कि भगवान सब कुछ है। तो इस बात को जानने वाले लोग इनका शरण लेते हैं। वास्तव में भगवान सबका पालन करते हैं, और ऐसे पालन करता भगवान का जो शरण नहीं लेता है वो नमक हराम है। सूरदास जी कहते हैं, जो तन दिए ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। जो शरीर दिया, जो माता के गर्भ में पालन किया, जीवन पर्यंत जो जीने की सुविधा प्रदान करता है, बिना टैक्स के, बिना बिल चुकाए नाकों तक ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है फ्री, जिसके बिना हम आधा घंटा भी जी नहीं सकते, उनका भजन करने में मतभेद है, करें न करें, या तो वास्तव में नमक हरामीपन है। तो देखिए, एक विशेष बात यहाँ देवताओं की है। देवताओं की स्तुति तो यहाँ पूरी हो गई। देवताओं की विशेषता है कि वो भगवान के भक्त हैं, और असुरों की विशेषता क्या है कि संसार के भोगों को अपने भोक्ता मानते हैं अपने को, और भगवान का कोई कीमत नहीं समझते। तो एक समुद्र मंथन के बाद सुखदेव गोस्वामी अपनी कमेंट्री देते हैं भागवत में, एक प्रश्न किए हैं, और प्रश्न का उत्तर अंतिम पंक्ति में देते हैं। कहते हैं कि एक ही काल में, एक ही समय में, एवं सुरा सुरगणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयो पिफले विकल्पा तत्रा मृतम सुरगणा फलमांज सापु यत्पाद पंकज रज श्रणयान न दैत्या। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक विचारणीय विषय है कि देवता और असुर दोनों एक ही समय में, एक मुहूर्त में, ऐसा नहीं कि देवता लोग शुभ मुहूर्त में समुद्र मंथन प्रारंभ किए और असुर लोग भद्रा में चालू कर दिए, नहीं, एक ही मुहूर्त में समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सम देश भी एक था, कभी कभी स्थान के भेद से भी फल में भेद हो जाता है। उचित स्थान नहीं है, पुण्य स्थान नहीं है, तो फल ठीक से नहीं प्राप्त हो पाता। तो सम देश, देश भी समान, काल भी समान, हेतु लक्ष्य भी समान। दोनों का लक्ष्य था अमृत पीना, हेत्वार्थ अमृतम, हेत्वार्थ कर्म, कर्म भी एक, दोनों मंथन किए। बल्कि असुर लोग ज्यादा परिश्रम किए। ज्यादा परिश्रम कैसे किए, तो वासुकी के फन के समय तरफ थे, तो वासुकी जब जोर पड़ता था तो विष उगलते थे, गर्म सांस छोड़ते थे, इस तरह से असुरों का शरीर जलता था। फिर भी जिद में थे, क्योंकि सिलेक्शन स्वयं किए थे, तो अब जिद में थे कि हम हटेंगे नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनका शरीर ऐसे जल गया था जैसे जंगल में आग लगने पर दवानल में झुलसे हुए सारे वृक्ष जल जाते हैं, लेकिन सखू का वृक्ष जो होता है उसके पत्ते टहनियां जल जाती है, लेकिन जो भीतर का हीर है वो नहीं आग से जलता, वैसे ही खड़ा रहता है। तो वैसे असुर लोग सखू वृक्ष की तरह खड़े थे, जल तो गए थे, काले हो गए थे, लेकिन खड़ा थे तो ज्यादा परिश्रम किए थे, लेकिन फल में अंतर क्यों हो गया? तत्रामृतम सुर गणा, देवताओं को अमृत मिला और असुरों को नहीं। ये फलमंज सापु, फल में इतना भारी अंतर क्यों हो गया? ये प्रश्न है सुखदेव गोस्वामी का। आप बता सकते हैं उत्तर क्या कारण था? स्वयं उत्तर देते हैं, जतपाद पंकज रज श्रणयान। एक पक्ष भगवान के चरण कमल के आश्रय में था और न दैत्या, दैत्य लोग नहीं थे। देवताओं को पूरा विश्वास था कि भगवान इसमें इन्वॉल्व है तो अमृत मिलेगा पक्का। ऐसा नहीं कि भगवान केवल ऑर्डर दे दिए, खुद भाग लिए और पूरी तरह से भाग लिए। जब मंदराचल उठाकर देवता लोग चले, भगवान कहे कि मंदराचल की मथानी बनाना पड़ेगा, क्षीर समुद्र मथना है, साधारण मथनी से तो मथाएगा नहीं। तो अब दोनों पक्ष मिल गए थे, जाकर मंदराचल उखाड़ लिए पूरा पहाड़। जब परस्पर अपने परिवार में, अपने गोतिया में मेल होता है, कभी कभी प्राय तो मनमुटाव ही रहता है, जब मेल हो जाता है फिर तो दूसरों को कुछ नहीं समझते। तो जो मैं आकर उखाड़ लिए पर्वत, पर्वत गिरा और सब लोग दब गए। भगवान जब गरुड़ जी से, गरुड़ जी पर चढ़कर आए मंदराचल के पास, तो देखे लो ये उखाड़ लिए हैं और सब दबे हुए हैं। तो भगवान अपने बाएं हाथ से पर्वत को उठा करके गरुड़ पर रख दिए और अपने शुभ दृष्टि से सबको ठीक कर लिए और फिर सबको कहे आप चढ़ जाओ गरुड़ जी पर। गरुड़ का बल वहां पता लगता है। भगवद गीता में जब पढ़ते हैं कि पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, तो कभी कभी गरुड़ है तो हाँ यहां पता चलता है कि वो गरुड़ है। एक साधारण पक्षी पूरा पहाड़ लेकर, मंदराचल लेकर और पूरे देवतासुरों को लेकर उड़ कर आए आकाश मार्ग से और समुद्र के तट पर सबको उतार कर भगवान कहे अब आप जाइए, अब आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वासुकी को बुलाना है, वासुकी आपके भय से नहीं आएगा, तो भेज दिए। तो देखिए प्रारंभ से लेकर अंत तक भगवान है समुद्र मंथन में। अगर भगवान पर्वत नहीं उठाए होते तो देवता लोग समुद्र मत कर अमृत क्या पीते, वो मर चुके थे। उनको वहां से उबारे। इसके बाद समुद्र में जब मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र के अंदर जब मंदराचल को रखा गया तो डूब गया। जा अब कैसे मथेंगे? फिर एक समस्या उत्पन्न हुई। तो भगवान कूर्म रूप में, कच्छप रूप में उस पर्वत को लेकर आए। कितना इन्वॉल्व है, भीतर उनके पीठ पर पर्वत रहा। अगर एक बार केवल लाकर दे नहीं दिए, पूरा मंथन काल में रहे, क्योंकि कभी भी डूब सकता था, उसको बैलेंस करने के लिए थे। और भगवान के पीठ पर ही मंथन हुआ तो भगवान के पीठ पर तो बड़ा कष्ट हुआ होगा। सुध गोस्वामी कहते हैं नहीं, उनको सुख का नींद आ रहा था, लग रहा था पीठ कोई खुजला रहा है, भगवान आनंद में सो रहे थे। और वासुकी के अंदर भी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी की, वासुकी के अंदर भी तमोगुण दे दिए। जैसे कोई ऑपरेशन करने के लिए कोई स्पेशल इंजेक्शन दिया जाता है, अगर वो बेहोश ना हो तो काट कुट करने पर तो चिल्लाने लगेगा ना, तो वासुकी के अंदर भी तम देकर बेहोश कर दिए भगवान। नहीं तो इतना रगड़ पहाड़ में हो रहा है, कष्ट होगा तो सह पाएंगे, झेल पाएंगे? तो उनके अंदर भी प्रवेश किए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और इसके साथ जब कभी कभी अनबैलेंस होकर ऊपर उठ जाता था पहाड़, तो किसी काठ में बांधा नहीं गया था, ऊपर उठ जाता था, तो उसको बैलेंस करने के लिए भगवान एक विशाल शरीर धारण करके उसको ऊपर से भी दबाते थे, पकड़े थे। देखिए कितना इन्वॉल्व है समुद्र मंथन में। देवताओं को पूरा विश्वास है कि हम लोगों की बस की बात नहीं है, अगर भगवान नहीं रहते तो होने वाला ही नहीं है। असुर लोग सोच रहे हैं कि हम ही मथ रहे हैं। इसके बाद जब अमृत निकल गया, देखिए कई समय दिक्कत हुआ। जब अमृत निकला तो अमृत भी लेकर कोई साधारण नहीं आया, भगवान ही आए। धनवंतरी के रूप में अमृतम सोने का कलश लेकर। थोड़ा सा विचार करना चाहिए था असुरों को ना कि भगवान इतना इन बल में अमृत भी लेकर यही आए, ये कौन है परिचय तो पूछना चाहिए। बस देखे पढ़े लिखे तो थे ही, अमृतम पढ़े और कलश छीन कर भाग गए उनके हाथ से लेकर भाग गए। और भाग कर चलो एक साथ पिएंगे ऐसा भी नहीं, एक दूसरे से पहले से दूसरा दूसरा से तीसरा छीनते जाए, हम पूर्वम मैं पीऊंगा पहले बाद में तुम पीना, मैं परिश्रम कर रहा था तू तो ऐसे खड़ा खड़ा केवल कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे छीनते हुए एक दूसरे से जा रहे थे। तो उस समय भी भगवान देवता लोग निराश हो गए लेकिन भगवान अजीत साथ में थे, तो देवता लोग पीछा नहीं किए असुरों का, भगवान की तरफ देखने लगे प्रभु अब क्या होगा। विश्वास तो था कि भगवान साथ में है तो कुछ करेंगे, भगवान आश्वासन दिए चुप रहो उनको कर लेने दो जो कर रहे हैं। देवता लोग एकदम कन्फर्म थे कि भगवान अमृत पिलाएंगे। इसके बाद भगवान एक रूप में इनके साथ हैं अजीत रूप में, और असुरों के तरफ मोहिनी रूप इमरजेंसी रूप धारण कर लिए, एक स्त्री का सुंदर रूप धारण किए और देवताओं को मोहित कर लिए। बिना मांगे अमृत देवता लोग असुरों को मोहित कर लिए और बिना मांगे असुर उनके हाथ में अमृत दे दिए। भगवत गीता में कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार है फल का नहीं, फल तो मेरे मुट्ठी में है, तो समस्त कर्मों के फलदाता भगवान अपने हाथ में फिर ले लिए अमृत। और वहां बड़ी भंगी से उनसे बात करें, मुझको कोई अनुभव नहीं है सर्विस का, मैं नहीं जानती कैसे सर्विस करना है। कहे नहीं नहीं जो करोगी वही ठीक है। तो कहे कि देखिए आप लोग इतने ऊंचे कुल के कश्यप जी के वंशज होकर हमारे जैसे उल्टा वेश्या पर विश्वास करें, हद हो गया, कैसे आप हम पर विश्वास कर रहे हैं, आप लोग बड़े घर के हैं। तो कहे नहीं नहीं तुम झूठ बोलती हो, तुम ऐसे नहीं हो, हम तो ऐसा विचार कर रहे हैं कि तुमको आज तक किसी देवता मनुष्य कोई छुआ तक नहीं है, तुम परम पवित्र हो। बात तो ठीक ही कह रहे थे लेकिन भगवान उनको भ्रम में डाल रहे थे, फिर भी दे दिए अमृत और कहे ठीक है चलिए अलग पंक्ति लगाइए असुरों को और देवताओं का अलग पंक्ति लगाकर, और उनको केवल अपने सुंदर रूप सुंदर नेत्रों से देख देख कर आश्वासन देते रहे, ये चिंता मत कीजिए, ऊपर का जो पतला हिस्सा है ना पंचोचरी देवताओं को पिला लेती हूँ, गाढ़ माल लेकर आपके पास आ रही हूँ। आश्वासन देते देते देवताओं को पिला दिए और असुरों को पिलाए नहीं। कारण क्या था? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यत्पाद पंकज रजह श्रणयान, एक पक्ष भगवान पर पूरा विश्वास करता था, दूसरा न दैत्य, नहीं विश्वास करने के कारण केवल परिश्रम हाथ लगा, एक बूंद भी अमृत नहीं मिला। ये देखिए इतना भारी गड़बड़ी हो गई। तो रक्षक के रूप में पालक के रूप में देवता लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं है, भगवान ही रक्षक हैं पूरा विश्वास, ये सिद्धांत है। लेकिन भक्तों की विशेषता क्या है कि वे इस बात को जानते हैं विश्वास करते हैं, असुर लोग नहीं करते हैं, अवश्य रक्षी वे कृष्ण, ये सिद्धांत है। लेकिन विश्वास पालन, इस विश्वास का पालन करना भक्ति है, वैष्णवता है। भगवान तो रक्षा करते हैं करेंगे लेकिन इस विश्वास में कभी कभी स्खलन हो जाता है, भरोसा नहीं होता, तब गड़बड़ हो जाता है, अवश्य भगवान रक्षा करेंगे। इस विषय में भागवत साक्षी है कि अर्जुन भीमसेन जैसे विश्व विजेता अजय विजेता जिनके साथ हैं, जिनके खास ससुर हैं, वह उतरा जब ब्रह्मास्त्र का सामना की गर्भ जलने लगा तो कृष्ण के शरण में आई। अर्जुन के शरण में भी जा सकती थी, हे गांडीव धारी हमारी रक्षा करो, लेकिन कहती है पाही पाही महाजोगिन देव देव जगत पते नान्यम त्वद अभयम पश्चे जत्र मृत्यु परस्परम। भगवान के शरण में आई, कही हे महाजोगिन आप हमारी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। भगवान मानो कहे कि मैं क्यों रक्षा करूं, तो आप सर्वश्रेष्ठ सर्वाराध्य हैं, देव देव देवताओं के भी देव, जो पूज्य लोग हैं शिव ब्रह्मा उनके भी आराध्य हैं, बड़े बड़े लोग आपके शरण में आते हैं, शरण लेते हैं, और आपका ये जिम्मेवारी है, आप जगत पालन हैं, जगत पते, जगत का पालन करना रक्षा करना आपकी ड्यूटी है, हम दूसरे के शरण में क्यों जाएं, आप हमारी रक्षा कीजिए। कहे नहीं, दूसरा भी कर सकता है, अर्जुन भी कर सकता है, उनके शरण में जाओ। कहते हैं न अन्यम त्वद अभयम पश्ये, आपके अतिरिक्त किसी को मैं नहीं देखती हूं कि वह बचा सके, भय से मुक्त कर सके, अभय तो आपके हाथ में है। जत्र मृत्यु परस्परम, परस्पर लोग एक दूसरे को मार भले सकते हैं लेकिन बचाने वाले तो आप ही हैं। उत्तरा को सब कुछ पता था कि गुरु पुत्र जो समुद्र के द्वारा मर चुका था उसको भी दक्षिणा के रूप में लौटा दिए। द्वारिका के एक ब्राह्मण के पुत्र जन्म ले लेकर मर जाते थे और खूब गाली देता था कृष्ण बलराम को कि ऐसे लोग दुनिया जिनको भगवान कहती है उनके राजधानी में हमारा ये दुर्दशा, ये कैसा शासक है, कैसे राजा है। अर्जुन को असह्य हो गया, क्या ब्राह्मण बोल रहा है। अर्जुन कहे कि हम बचाएंगे, कैसे जमराज मारता है इस बार देखते हैं। सारा बाउंड्री बना दी अपने बाणों का, फिर भी बच्चा मर गया। तो अब तो अर्जुन को भी गाली देने लगा, ये डींग हाँकता था आकर। तो अर्जुन कहे, अर्जुन तो पहले अहंकार में कहे बचा लेंगे, बाद में समझ में आ गया कि अरे रिमोट कंट्रोल तो यहीं बैठा है, इनके शरण जाना। कृष्ण से कहे कि प्रभु इस ब्राह्मण की सहायता किया जाए। तो भगवान कहे तो बहस क्यों बांध रहा था, ये बात पहले ही कहना चाहिए था। तो अर्जुन के प्रार्थना से भगवान उस बच्चे को लौटाए। ये पता है उत्तरा को कि मरे हुए को भी लौटा सकते हैं, यही नहीं देवकी को भी एक बात मन में आ गया कि आप दुनिया के कितने लोगों को बचाते चलते हो, अपने मरे हुए गुरु पुत्र को लौटाए, ब्राह्मण के बच्चे को लौटाए, हमारे छह छह पुत्र कंस मार दिया उसको भी लौटा दो, हम उसको देखना चाहती हैं। तो भगवान उनको भी लौटाए। तो ये सब कथा जानती है उत्तरा। जत्र मृत्यु परस्पर, में एक दूसरा दूसरे को मारने का कारण हो सकता है लेकिन बचाने वाले तो आप ही हैं, रक्षक आप ही हैं। अच्छा, कुंती महारानी अपने स्तुति में कह रही हैं कि हे कृष्ण, आप आज ही चले जाओगे, आपके जाने के बाद क्या होगा इस पर विचार कर रहे हो। लास्ट में कहती हैं, आपके जो महाभारत युद्ध में मारे गए हैं उनके भाई भतीजे बेटा सब जीवित हैं, आप चले जाओगे तो अचानक धावा बोल देंगे तो हमारे बच्चे क्या कर पाएंगे। तो मानो भगवान कहते हैं कि क्यों चिंता करती हो बुआ जी, ये अर्जुन इतने बड़े गांडीवधारी अजय विजेता भीमसेन, अच्छा चलो अगर इन लोगों को कमजोर समझती हो तो और तुम्हारे भतीजे हैं, भाई हैं, हम ही अकेले थोड़े हैं। प्रद्युम्न को बुला लेना, अनिरुद्ध को बुला लेना, एक से एक ज्यादा लोग हैं, उनको बुला लो। तो कहती है ना के वयम नाम रूपाभ्याम जदभी स पांडवा, क्या ये माटी के धोनों की बात करते हो, ये जादव और पांडव जो संज्ञा है जदभी स पांडवा, जादव और पांडव के वयम नाम रूपाभ्याम, ये केवल नाम और रूप है। भवतो जब दर्शनम जर ही हिषि काणामिवेशितु, जैसे इंद्रियों में शरीर के अंदर आंख कान जीभ हाथ पैर सब है लेकिन उस क्रियाशील तभी हो सकता जब उसके अंदर प्राण है, प्राण ही निकल जाए तो इंद्रियां बस ऐसे ही पड़ी रहती है, न आंख देख सकती न कान सुन सकता न जीभ बोल सकती न हाथ पैर चल सकता है। इसमें चलने का देखने का सुनने का सारा क्षमता तो प्राण में है, आत्मा में। उसी प्रकार आपकी उपस्थिति से अर्जुन अर्जुन है। आप जब उपस्थित हो, आपकी जब शुभ दृष्टि है तो संपूर्ण विश्व को जीत लिया अर्जुन, लेकिन आपके नहीं रहने पर आप अगर नकार दें तो अर्जुन कुछ नहीं कर पाएगा, प्रद्युम्न अनिरुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे जादव लोग, ये सब केवल संज्ञा भर है, नाम भर है। और यह अनुभूति अर्जुन भी किए, जब भगवान चले गए तो भगवान के जाने का संदेश अर्जुन ही लेकर द्वारिका से लौटे महाराज युधिष्ठिर के सामने। और महाराज युधिष्ठिर इनकी अवस्था पर प्रश्न की, क्या हो गया अर्जुन, क्यों इतना दुखी हो? तो बहुत लंबा लिस्ट प्रस्तुत किए कि यह कारण, हमको छोड़कर हमारे प्रियतम श्री कृष्ण चले गए। तो लास्ट में कहते हैं, तदवई धनुष्तव ईशव सरथो हयास्ते। हे भाई साहब, यह वही विश्व प्रसिद्ध राइफल मेरे हाथ में है गांडीव, तदवई धनु, यह धनु और ईशव बाण भी वही है, अमोघ बाण। अर्जुन के पास ऐसे तर्कस था कि वो बाण लेकर मारते थे और मारकर बाण फिर लौट कर इसी तर्कस में आ जाता था, बोझा नहीं ढोना था। दो तीन बाण रखते थे, उसी को मारते थे और मार कर वो बाण लौटता था। वही बाण है, वही धनुष है। सरथो, रथ भी वही है, ऐसा नहीं कि सवारी बदल गया। और हयास्ते, घोड़े भी वही है, आकाश में उड़ने वाले, जब चाहे वो जंप कर सकते थे ऊंचा नीचा। भीष्म पितामह जब लड़ रहे थे तो भगवान इशारे पर घोड़ों को चलाते थे, जब उनका बाण आता था उनके गर्दन की तरफ तो कभी घुटने टेक लेते थे भगवान के इशारे पर। और जब खूब तेज मिलते बाएं दाएं ऐसे घोड़े हिलते थे कि भीष्म की भी बुद्धि काम नहीं कर पा रही थी, कर्ण को भी छका देते थे। वही घोड़े हैं, घोड़े भी नहीं बदले गए हैं, रथ भी नहीं बदला गया है, बाण भी वही है, धनुष भी वही है। और सोहम रथी, उस रथ पर चलने वाला रथी अर्जुन भी मैं हूं। निपतयो आमनंती, बड़े बड़े राजाओं को पानी पिलाने वाला, छक्का छुड़ाने वाला, इंद्र को अरेस्ट करने वाला, भगवान शिव को अरेस्ट करने वाला, वही अर्जुन मैं हूं। लेकिन सर्वम क्षणे न तद्भूत सदीश रिक्त, लेकिन क्षण भर में सब बेकार हो गया। भस्मन हुतम कुह कराध मिवोप्न मुष्याम, जैसे आग खत्म हो जाए तो राख में हवन डालने पर, ईंधन डालने पर भी जलेगा नहीं। जो उदाहरण कुंती महारानी दे रही वैसे ही दे रहे हैं कि सब कुछ बेकार हो गया, क्योंकि सारथी वह नहीं है। सब कुछ ठीक है लेकिन सारथी नहीं है। तो आज जानते हैं गांडीवधारी को एक लाठी डंटा से कोल भील और गोप लोग पराजित कर दिए और द्वारिका के महिषियों को छीन लिए, ये स्थिति हो गया, स्पष्ट हो गया। कहीं अर्जुन के मन में अहंकार न हो जाए कि हमने महाभारत जीता है, तो भगवान उसकी परीक्षा ले लिया। कोल भील कोई दूसरा नहीं था, भगवान ही कोल भील के रूप में, गोप के रूप में छीने थे, क्योंकि भगवान के महिषियों को कोई दूसरा कैसे ले सकता है। अर्जुन के अहंकार को चूर्ण कर दिए, कहीं इस अहंकार में मत जीना कि हमने सब कुछ किया है। तो इस प्रकार यह है भक्तों का विश्वास। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण की सहायता के लिए गए थे तो भगवान अर्जुन को चांस दिए और निहत्था कृष्ण की एक अक्षौणी सेना, दोनों में क्या लेना है, अर्जुन को पहले चांस दिया तो कहे आप निहत्था कृष्ण। दुर्योधन एक अक्षौणी सेना लेकर चला गया, तो महाभारत का वो प्रसंग पढ़िए। भगवान कहते हैं अर्जुन हद हो गया, महाराज युधिष्ठिर तुमको योद्धा समझकर भेजे थे लेकिन तू तो महामूर्ख निकला, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा तो क्या वहां भोज करने जाना है? मुझको क्यों तू सेलेक्ट किया हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैं तुमको चांस दिया कि तुम सेना लेगा, लेकिन तुम तो मुझको लेकर के अपनी मूर्खता सिद्ध कर दिया। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मुझको जय पराजय की चिंता नहीं है, मैं तो आपको निहत्थे कृष्ण को ऐसा काम दूंगा, अपने पूरे रथ और अपने जीवन का बागडोर आपके हाथ में दूंगा, दुनिया वाले जो नहीं दिए हैं वो नाम दूंगा आपको पारसार्थी, मेरे जीवन का रसी आपके हाथ में होगा, आप अपनी इच्छा से मेरे रथ को जय की ओर ले जाइए, पराजय की यह मुझे टेंशन नहीं है, रथ पकड़िए और चलिए महाभारत में। इतना सुंदर अर्जुन बोले हैं कि पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह है सिलेक्शन, मुझे जय की इच्छा ही नहीं, मुझे तो आप चाहिए, मुझे इस वैभव की इच्छा नहीं है। आप यदि मेरे रथ पर उपस्थित रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि मैं इंद्र को भी पराजित कर दूंगा, इंद्रपतियों का क्या कीमत है यदि आप मेरे अनुकूल हो। यह है भक्तों का विश्वास। इस तरह से अर्जुन ने उनको सिलेक्शन किया और एक स्पेशल नाम दिया पारसारथी। तो पारसारथी भगवान हो गए। तो इस प्रकार देवताओं को विश्वास है कि वही हमारी रक्षा कर सकते हैं, सभी कारण के कारण वही, वही जन्म दिए, वही पालन कर रहे हैं, तो आगे भी वही करेंगे। इस विश्वास के साथ जीना चाहिए और शरण लेने लायक भगवान है, इसलिए उनका शरण लेना चाहिए। स्वानम सनो धास्यति सम महात्मा, ब्रजाम सर्वे शरणम शरण्यम, उनके शरण में चलते हैं क्योंकि वो भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका स्वभाव है। तो इस रूप में हम लोग भी भगवान का शरण लेते हैं, वही अपने शरण में रखेंगे, हमको भजन करने की क्षमता भी वही देंगे। इनसे प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आप मुझे क्षमता दीजिए, आपको हम समझ सकें, आपका नाम जप सकें। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सप्तजी भजन करो दिन राति, आप कृपा कीजिए कि हम दिन रात आपका भजन करें, इसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं अहंकार कर लेना चाहिए, मैं मोस्ट सीनियर हूं, 35 वर्षों से भजन कर रहा हूं, तो गया काम से अब कुछ नहीं हो पाएगा। एकदम विनम्र भाव से भगवान का शरण लेकर भजन करना चाहिए, प्रतिदिन भजन करने के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, अपने शरण में रखिए प्रभु। इस तरह हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभु, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री राधा। देर हो गया, ठीक है, देर हो गया है, तो दो चार मिनट कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए।
हरे कृष्णा, आज के प्रवचन में मैं कमेंट करना चाहता हूं। तो जैसे जो बकरा होता है वो म्या म्या करते रहता है, वो सोचता है मैं हूं सब कुछ, मैं हूं सब कुछ, तो कसाई जल्दी उसका गर्दन काट देते हैं और उसका जल्दी आयुष्य खत्म हो जाता है। लेकिन जो पैरट होता है, मैना, सी पैरट, तो बोलते मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, तो सोने के पिंजरे में बैठ के उसको पेरो खाने को मिलता है। तो यही स्थिति है, अगर जो म्या म्या करता है जल्दी कटना होगा और प्रभु के शरण में रहे तो प्रभु अवश्य पालन करेंगे।
अच्छा, आपका प्रश्न है, इधर एक उधर पूछ रहे हैं प्रभु जी।
हरे कृष्ण, तो जैसे फर्स्ट कैंटो में श्रीमद् भागवतम में अश्वत्थामा का प्रसंग आता है, उसमें श्रीधर स्वामी लिखते हैं जब वो पांचों पांडव का पुत्र को जब अश्वत्थामा वध कर देते हैं, उसमें बोलते राज भी दृढ़दंडास्तु कृत्वा पापानि मानव विद्युत कलमसो यान्ति स्वर्गम सुकृति नमेता। तो इधर विश्वरूप को वध करने के बाद छह प्रकार का अतताई को वर्णन किए उसमें, तो विश्व रूप को वध करने के बाद तो इंद्र भी अतताई हो गए, तो बस ब्रह्म हत्या के वापसी।
हाँ, अतताई, अतताई क्या, जितने भी प्रकार के पाप हैं वो सारा पाप समाप्त हो जाता है भगवान के एक नाम उच्चारण करने से। ऐसा नहीं कि इंद्र का ये बिजनेस नहीं था, नाम अपराधी नहीं थे कि पाप करें और नाम लें, स्वाभाविक हो गया। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अपि चेतसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स, सम्यक व्यवस्थितो ही स, यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। वो समुचित रूप से व्यवस्थित है कि वो भगवान की भक्ति करता है, और इसके साथ अगर अगल बगल कुछ गलतियां हो गई
तो उसका कोई कीमत नहीं है, वो साधु ही है, साधु ही मानना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं साधु ही मानने लायक है। अर्जुन के द्वारा, अरे इंद्र के द्वारा हम देखते हैं कई बार गलतियां हो जाती हैं, बड़ा भयंकर भयंकर गलतियां, लेकिन इंद्र का अभीष्ट नहीं है ऐसा गलती करने का। लोभ बस, काम बस कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। काम क्रोध एक आगंतुक भूत की तरह है, वो नेचर नहीं है अर्जुन का, अरे वो इंद्र का नेचर नहीं है, पाप की प्रवृत्ति नहीं है उनके अंदर, लेकिन कभी काम से प्रभावित हो जाते हैं, कभी क्रोध से, कभी लोभ से। तो लोभ और ये गड़बड़ चीज है, व्यक्ति को गलत चीज में ले ही जाता है। फिर भी उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान का शरण नहीं छोड़ते, सम्यक व्यवस्थित है। ऐसा नहीं कि अपने पर भरोसा कर लेते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। हिरण्यकश्यपु, रावण आदि भगवान पर भरोसा ही नहीं करते थे, शिशुपाल आदि। तो उन लोगों का एक दूसरा पोजीशन है, और अर्जुन का बार बार अर्जुन आ रहा है, और कृष्ण इंद्र का दूसरा पोजीशन है। तो अतताई होते हुए भी देखिए, वहां तो आप बात कर रहे हैं इंद्र की, स्वयं अश्वत्थामा का भी वध अर्जुन नहीं किए, वो अतताई तो था ही था। भगवान कह रहे हैं अतताई है, भीमसेन कह रहे हैं अतताई है, फिर भी अर्जुन नहीं मार रहे हैं, और अंततः नहीं ही मारे, छोड़ दिए। तो कुछ ऐसा पोजीशन है ना जहां बहुत कुछ विचार करना पड़ता है, और किस स्थिति में छोड़े इस लास्ट में वर्णन है कि चाहे वो ब्राह्मण अतताई भी हो तो बद्ध नहीं, शारीरिक बद्ध लायक नहीं है। तो इस स्थिति में इंद्र भी भगवान का शरण लिए, उनका वो पाप समाप्त हुआ, इसके लिए बेचारे को प्रायश्चित भी करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वृत्रासुर को मारने के बाद उनको भोगना पड़ा, 1000 वर्ष तक लक्ष्मी के शरण में रहे मानसरोवर में। तो गलती तो गलती ही है चाहे जो भी करे, लेकिन उनको अतताई के कटघरी में रखकर फांसी दे देना उचित नहीं है। त्रिलोकी के राजा हैं और भगवान के भक्त हैं, यह उनकी विशेषता है। जब पृथु महाराज के यज्ञ में पाखंड की स्थापना कर दिए, इंद्र के द्वारा ही हुआ, तो भगवान लेकर आए थे इंद्र का, हिम्मत नहीं पड़ रहा था कि पृथु महाराज के पास जाएं। यद्यपि ब्रह्मा जी के कहने पर पृथु महाराज अपना क्रोध शांत हो गए, फिर भी भगवान लेकर आए और कहे कि पृथु, अगर आप जैसे व्यक्ति में क्रोध आ जाए तो इतने दिनों तक गुरुजनों का किया हुआ सेवा सब व्यर्थ चला जाएगा, आप क्षमा कर दो इंद्र को। स्वयं भगवान इंद्र से क्षमा मंगवाए और इंद्र और पृथ्वी को मिलाए। तो यहां तो यह कहा जा सकता, देखो पृथ्वी महाराज उचित थे, वो पाखंड स्थापित किया था, उसको मारना ही चाहिए, तो इसका मतलब भगवान गलत थे। ऐसा नहीं है, इंद्र भगवान का भक्त है इसलिए पक्ष लेते हैं। एक विशेष बात रामचरितमानस में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, बड़ा महत्वपूर्ण, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सौ बार हिए की। प्रभु की यह माइनस पॉइंट कहिए चाहे प्लस कहिए, जो भी कहिए, प्रभु की एक विशेष विशेषताओं में, करोड़ों विशेषताओं में एक विशेषता है कि अपने शरणागत के चूक पर ध्यान ही नहीं देते, जो कुछ अच्छा किया है उसी को सैकड़ों बार याद करते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, जो चूक कर दिया गलती उनके चित्त में नहीं रहता। करत सुरति सौ बार हिए की, अगर कुछ अच्छा किया है उसको सैकड़ों बार याद करते हैं। देखिए यहां सुग्रीव जी को बराबर आसन पर बिठाए और वशिष्ठ जी से कहते हैं गुरुदेव हमारे मित्र हैं, इनका आसन हमसे कम नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर आसन पर बैठाए और कहे कि इनकी कृपा से मैंने दशानन पर विजय प्राप्त किया। लेकिन सुग्रीव का चूक, भूल गए थे कि लंका पर चढ़ाई भी करना है, बाली कुमार का राज मिल गया और उस राज मद में भूल गए, और लक्ष्मण को जाकर याद दिलाना पड़ा, केवल इन्फॉर्मेशन नहीं, धनुष उठाना पड़ा लक्ष्मण को, होश में कर देंगे, तब जाकर उनको होश आया कि अरे शरण में आए, कहे ठीक है सहायता करेंगे। इतनी भारी गलती किए सुग्रीव। दूसरी गलती कि जिस गलती का आरोप करके बाली को मारे कि तुम अपने भाई के पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किए, वही गलती सुग्रीव भी किए बाली के मरने के बाद बाली के पत्नी के साथ विवाह किए, लेकिन सपने नहीं राम ही हेरा, स्वप्न में भी भगवान इस गलती पर विचार नहीं किए। राजसभा रघुवीर बखाने, अपने राजसभा में प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारे मित्र हैं सुग्रीव जी, हमसे कम नहीं है, बराबर है, एक बंदर को बराबर आसन पर बिठाकर महत्व बढ़ा रहे हैं। तो रहती न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरति सब बार ही कि बंदर शिष्टाचार का पालन ही नहीं करते, प्रभु नीचे बैठे रहते हैं, वो पेड़ पर बैठते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु तरुतर कपिदार पर तेह किए आप समान, तुलसी न कहूं राम सो साहिब सिल निधान। कहते हैं कि हमारे प्रभु पेड़ के नीचे बैठते हैं और सेवक बंदर पेड़ के ऊपर, ऐसा साहिब कोई मिलेगा सिल निधान साहब, साहब की कुर्सी पर, बोस के कुर्सी पर कोई बैठ जाए तो नौकरी चली जाएगी, लेकिन हमारे साहब इतना सिल निधान है। तो कहने का मतलब कि भगवान के शरण में रहने वाले का भगवान फेवर करते हैं, ऐसे फेवर करते हैं। भागवत में कहा गया है जैसे पतिव्रता स्त्री का फेवर पति करता है, वैसे अपने शरणागत भक्त के फेवर भगवान करते हैं, ये उदाहरण दिया गया है। पतिव्रता का फेवर करने वाला पति को लंपट नहीं कहा जाता, उसको वास्तविक पति कहा जाता है। कुलटा का फेवर करने वाले को लंपट कहा गया है। तो भगवान का ये विशेषता है, इसको दोष के रूप में मत देखिए। ठीक है, उनको एक बार चांस दे दिए, तीन चार बार हाथ उठा लिए। माइक चालू करो ना, सुनाई नहीं दे।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बड़ी अच्छी क्लास दी आज को, भगवान की शरण लेने का बताया। कबीर जी इसी बात को कहते हैं, दो फाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। हाँ। लेकिन जो कीर की शरण ले ली जिसने, हाँ, वो दाड़ा बच गया।
हाँ, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वो बतलाया जो चक्की है, चक्की जो आटा पीसते हैं तो उसके बीच में कील होता है, वहां थोड़ा गड्ढा होता है, तो गेहूं जब डाला जाता है तो जो कील के पास सटे रहते हैं वो सुरक्षित साबुत रहते हैं, जो कील से इतर जाते हैं वो पीसे जाते हैं, आटे बन जाते हैं। दो पाटन के बीच में कबीरदास जी का है कि जो आटा पीस पीस कर गेहूं आटा बन जाता है, लेकिन जो शरण में है कील के पकड़ कर रखा है वो नहीं पीसा जाता, कितना हो तेज चले। तो जो भगवान के शरण में रहता है वो सुरक्षित बच जाता है, और बाकी लोग जो भगवान से दूर हटते हैं वो संसार में पीसे जाते हैं। हरे कृष्ण। ठीक, जय श्री प्रभु।
महाराज जी, महाराज हमारा कान में सुनने में आया, आपने बताया ये बॉडी है, शरीर है, देख सकते हैं कुछ, देखना है तो शरीर में जीव है, जीव निकल जाएंगे तो देखने के नहीं सकते, ये बात है। हम और जीव अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा बोला करके हमारा कान ने सुने। हम सुना गलती आएगा रहेंगे तो इसका अनुवाद करना, पहाड़ी अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा बोला करके हमारा सुनने में आया। हम लोग दोनों एक ही करके सुन सकते, पहाड़ी शरीर और आत्मा। तो आपने बताने से हमारा सुनने में आया, जीव निकल जाएंगे तो देख नहीं सकते, जीव अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा बोलने का मापद हमारे का मालूम है, इसका अनुवाद
नहीं। नहीं, जीव आत्मा एक ही शब्द है, जब शुद्ध अवस्था में रहता है तो उसको आत्मा कहते हैं, भगवान परमात्मा का अंश है, ममई अंश जीव भूत जीव सनातन, जो भगवान कहते हैं ममई अंश जीव भूत, तो वह भगवान का ही अंश जीव है। जब प्राकृत जगत में माया के चंगुल में रहता है तो उसको जीवात्मा कहते हैं, और जब शुद्ध अपने स्वरूप में रहता है तब उसको विशुद्ध आत्मा कहते हैं। बस आत्मा जीव में अंतर नहीं है, एक ही है। ठीक है, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।